700 यूनिट्स वर लेफ्ट ऑन द टेबल इन क्वार्टर टू, यानी के सेकंड क्वार्टर में, यानी के कोई भी उसका बायर नहीं इनको मिला.
बायर इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो प्राइसेस इन्होंने लगाई थी तो प्राइसेस जो है वो आज के लिहाज से नहीं लगाई बल्कि दो महीने पहले के हिसाब से लगाई है. तो वो ऑफकोर्स अगर somebody is asking for $1.4 million for the condominium and the worth now is $1 million, then you're not. हमारे डक फोर्ड साहब ने अपने घर की प्राइस जो है 3.2 मिलियन से 2.8 मिलियन पे लगा दी.
दैट्स द थिंग. तो ये जो है इन्होंने कहा जी कि इससे अब शायद रियल एस्टेट मार्केट में थोड़ा सा
हलचल
जो है हलचल है. ठीक है जी. अच्छा जी, एयर कनेडा ने पहली बार, एयर कनेडा को भी मैंने खुश देखा बड़े अरसे के बाद. वो कह रहे हैं जी लोग हमारे साथ बहुत बुकिंग्स कर रहे हैं, हालांकि ये मासूम थकेली एयरलाइन जो है पता नहीं इनके साथ कौन कर रहे हैं बुकिंग्स, लेकिन कहते हैं जी बेतहाशा हमारे पास बुकिंग्स आ रही हैं. और वो कह रहे हैं कि हमने जो इस क्वार्टर में 5-fold हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज किया, विच इज वेरी गुड थिंग, क्योंकि बेचारे बहुत ही क्राइसिस में थे एयर कनेडा वाले. मासूम मुझे इन पे बड़ा तरस आता. तो एयर कनेडा ने कहा है जी कि हमारा जो सेकंड क्वार्टर का जो टिकट सेल्स थे वो 94% को चले गए थे कंपेयर टू 2009 लेवल्स. और ये जो लोग कह रहे हैं जी इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, उसका हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ है. इसके अलावा जो पैसेंजर वॉल्यूम्स हैं वो 9.1 मिलियन पैसेंजर जो था इन दिस क्वार्टर था दैट एंडेड इन June 30th. और उन्होंने कहा जी कि दिस हैज टच 71% हायर कंपेयर टू 2019. और उन्होंने कहा जी कि इसमें जो पैसेंजर रेवेन्यू जो हमें आए थे, जो पैसेंजर से रेवेन्यू आए थे वो 80% थे कंपेयर टू 2019 लेवल.
जी यहां पर एक चीज हमें नोट करनी पड़ेगी कि अभी कल दो दिन पहले की आपकी रिपोर्ट थी कि यहां पर जो है बे इंतहा लोगों ने अपना
कैंसिलेशन किए हैं, कैंसिलेशन किए हैं, डिले कर दिए हैं,
डिले कर दिए हैं. इसके अलावा और वो जो है वहां पर, यहां पर अब ये नहीं है कि वो जो बुकिंग है उसकी उसको रखेंगे, उसको डिले कर देंगे,
डिले करेंगे. जी जी,
दैट विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस इन देयर कैलकुलेशन
करेगा. लेकिन माजिद भाई बात यह है कि ये एयरलाइन का तो कसूर नहीं है ना, ये तो एयरपोर्ट का कसूर है ना. ये एयरपोर्ट बैकलॉग जो है वो नहीं कर सक रहा, एयरपोर्ट के पास है. एयर कनाडा ने आज कहा है कि बड़ा उन्होंने बोस्ट किया आज अपनी रिपोर्ट में कि नाउ वी हैव 21,300 फुल टाइम वर्कर्स, जो कि बिल्कुल स्कैंटी सा एक वो लेवल आ गया था. लेकिन अब वो कह रहे हैं जी कि ये इतना हमारे पास चला गया है और कंपेयर टू जून में थे इनके 29,500 वर्कर्स थे, तो अब जरा और भी ज्यादा इन्होंने हायरिंग की है, विच मीन्स दैट द एयरलाइन इज डूइंग गुड. अच्छा जी, टीडी बैंक जो है हमारा कनाडा का, उसने आज बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है. उन्होंने कहा जी कि यूएस की जो एक कंपनी है कोविन इनकॉर्पोरेटेड, उसको हम ऑल कैश पे खरीद रहे हैं एंड दे आर पेइंग कनेडियन डॉलर्स, है ये यूएस डॉलर्स नहीं है, दिस इज कनेडियन डॉलर्स, 1.67 बिलियन कनेडियन डॉलर्स पे जो है इनको कैश कर रहे हैं, ये कैश इन इनकी ट्रांजैक्शन इनके साथ कर रहे हैं इनको बाय आउट करने के लिए. और वो कहते हैं जी कि इसकी वजह से जो इनका पर शेयर कनाडा के अंदर होएगा वो कनेडियन डॉलर्स 50 पर शेयर होएगा. अच्छा, ये बहुत अरसे से जो टीडी सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट आर्म जो है वो इनको कह रही थी,
they've been trying to buy this out for a very long time,
क्योंकि ये लोग अपना यूएस के अंदर फुटप्रिंट जो है वो बढ़ाना चाहते थे.
सही.
तो उसके लिए बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में पेंडेमिक आ गया और फिर ये कर नहीं सकते थे. तो वही अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो है इनके लिए ईजी हो जाएगा. वो कह रहे हैं जी कि हम जो है अपना अब इंटरेस्ट जरा थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो हमने कॉमन शेयर्स लिए थे चार्ल्स श्वाबे कॉरपोरेशन के, तो इसको हम अब सेल कर रहे हैं फॉर 28.4 मिलियन, ताकि हमारे पास काफी कैश फ्लो आ जाए और ये जो नई ट्रांजेक्शन्स है ये हम कर सकें. और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये सारी जो चीज है ये ट्रांजेक्शन सब क्लोज हो जाएंगी, बातचीत चल पड़ी है, एवरीथिंग इज रेडी, लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर है 2023 का उसमें ये सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होएगी और फिर ये क्लोज होएगी डील.
yes.
तो उसकी वजह से इनको बहुत फायदा होगा और कनेडियंस को बहुत फायदा होगा. टीडी बैंक अगर खुल जाएगा तो वो अपनी वहां से आसानी से कर सकेंगे ट्रांजेक्शन जो हैं. स्टैट्स कनाडा की आज जी बहुत ही अगेन कैस्केडिंग रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक जो है रेट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो हैं वो बढ़ गए हैं एंड दे आर नाउ द हाइएस्ट कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स हैं एंड सिंस 1996 दे आर द हाइएस्ट. 2021 के अंदर 34,200 केसेस रिपोर्ट किए गए थे विच आर 18% हायर देन 2020. और इसके अलावा जो है दे आर हायर इन 5 years ऑल टूगेदर एज वेल. वो कह रहे हैं जी कि ये जो नंबर है ये ओवरऑल क्राइम्स जो हैं, वैसे जैसे कि नॉन वायलेंट क्राइम्स हैं वो तो नीचे आए हैं, लेकिन जो दूसरे वायलेंट क्राइम्स हैं जैसे कि होमिसाइड, क्रिमिनल हरासमेंट, हेट क्राइम्स, फायर आर्म ऑफेंसेज, ये जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. तो एक तरफ ये है कि जी नॉन जो वायलेंट क्राइम्स हैं वो 3% से नीचे आए हैं, ये 5% से ऊपर चले गए हैं वायलेंट क्राइम्स. और इसके अंदर
वो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे क्राइम्स जो हैं दे आर ऑल अप राइट नाउ.
हाँ ऑल अप, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे है. और वो कहते हैं जी कि हालांकि पुलिस कह रही है कि डिस्पाइट इंक्रीज इन अवेयरनेस और जो हर वक्त यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं और अवेयरनेस मटेरियल्स भी दिए जाते हैं, उसके बावजूद ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा ऊपर जाती जा रही हैं, जो कि चिंता का बायस है कनाडा में. ब्रिटिश एयरवेज ने जी, जनाब ब्रिटिश एयरवेज के भी बुरे हाल हैं. वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो शॉर्ट हॉल फ्लाइट हैं इधर से हीथ्रो एयरपोर्ट से, उनको अब हम सस्पेंड कर रहे हैं. एक वीक पहले इन्होंने ये कहा था कि जी इन्होंने, हमने ऑलरेडी मैसेज भेजा था हीथ्रो को कि आपके जितने भी बुकिंग्स हैं, ट्रेवल बुकिंग्स, उनको प्लीज आप बंद कर दें. उसकी वजह यह है कि आपके जो एयरपोर्ट के ऊपर जो है स्टाफ का शॉर्टेज है और इतने लंबे लंबे, बिल्कुल कनाडा वाली हालत थी, पियर्सन वाली, और लोग जमीनों पे बैठे हुए हैं और आप लोग हैंडल नहीं कर सक रहे हैं, तो इसलिए हम जो है अपनी सेल सस्पेंड कर रहे हैं जब तक कि ये हालत अच्छी नहीं होगी. अच्छा, यहां पे जो शॉर्ट हॉल है उसका मतलब है 3 घंटे की फ्लाइट. तो वो जो 3-3 घंटे की फ्लाइट थी वो सब इन्होंने जो है वो सस्पेंड कर दी है ब्रिटिश एयरवेज ने. और उन्होंने कहा जी कि ये जो आपको पैसेंजर के नंबर्स भी हैं उनको भी कैप करना पड़ेगा 200,000 अंटिल सितंबर 11, तब ये पुराना जो सारा बैकलॉग है ये खत्म होएगा, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो रश है और ट्रैफिक है ये खत्म होएगी, तो फिर हम नई बुकिंग्स करना शुरू.
एट द सेम टाइम नॉट टू फॉरगेट लुफ्थांसा. लुफ्थांसा इज कमिंग इन द सेम पोजीशन नाउ बिकॉज़ दे आर गोइंग ऑन स्ट्राइक.
स्ट्राइक एज वेल. हाँ जी, तो उन्होंने कहा जी कि ये एयरपोर्ट्स जो हैं सही तरह से नहीं कर सकते और अब एयरलाइंस जो हैं वो भी यही चीजें कर रही हैं. अच्छा जनाब, कुछ अर्सा पहले ये हुआ था, आपको हमने बताया ही था कि जिस वक्त श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे थे माजिद भाई, तो वहां पे लोगों ने जलाओ घेराओ वो सारा कुछ किया था, और उसके अंदर जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे रानिल विक्रमसिंघे, उनका भी घर जो था, अब देखें जरा कि वो, उसको भी जला दिया था इन्होंने. यानी इतने बुरे तरीके से जला दिया था कि एक एक चीज इस घर के अंदर जल गई थी. ये कैम्ब्रिज प्लेस थी, वहां पे इनका घर था. और इस सिलसिले में पहले कुछ इन्होंने 4 लोग अरेस्ट किए थे पुलिस ने बिटवीन द एजेस ऑफ 18 एंड 22. आज फिर से 3 लोग जो है अरेस्ट किए हैं फ्रॉम पनी यालंडा एंड नरा हिंगपिता, जो दो इनके इलाके हैं वहां से. और ये इनको जो है पेश किया गया है कोलंबो फोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, और 10 अगस्त तक जो है इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा. अच्छा, इसके ऊपर जो रानिल विक्रमसिंघे जो हैं उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया है. उन्होंने कहा इन लोगों ने जो मेरा घर जलाया उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल्स थे. फॉर एग्जांपल 4,000 बुक्स थी जो कि सेंचुरीज ओल्ड हिस्ट्री की बुक्स थी जिसके के अंदर, और एक मेरा वहां पे पियानो था जो कि 125 ईयर्स ओल्ड था. तो ये सारे बड़े प्रेशियस ट्रेजर्स थे मेरे पास, जो कि इन लोगों ने जब मेरा घर जलाया तो ये सब कुछ जल गया. तो यस, वेरी सैड. तो वो खासतौर पे अपनी बुक्स के ऊपर बड़ा वो अफसोस का इजहार कर रहे थे. तो वो कह रहे थे कि ये मुझे उसका जी है जो सबसे ज्यादा अफसोस है. अच्छा जनाब, अब तो द कैट इज आउट ऑफ द बैग, यानी कि कोई अब तो वो रही नहीं है कि ये होएगा या नहीं होएगा, होएगा या नहीं होएगा. वो जो कैफियत थी वो खत्म हो गई है. एंड नैंसी पेलोसी लैंडेड इन ताइवान फाइनली, राइट?
आई एम सो सरप्राइज,
सो सरप्राइज. हाँ जी, बाइडन साहब को देखो जरा. बाइडन साहब क्या कह रहे हैं कि ये, वैसे हमें मुझे पता नहीं है कि ये जो है यूएस की जो मिलिट्री है उसने कोई इनको इजाजत दी थी या कोई उन्होंने कोई गो हेड दिया था. तो पायान तुसी तो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो, तो आपने रोका नहीं इनको, बाजी को, कि आप ना जाएं. हालांकि आपने अभी 2 दिन पहले जो हमने इधर बताया था कि इन्होंने जब बात की थी प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा था कि जी हमारा स्टेटस वही है जो है चाइना के ऊपर, पॉलिसी जो है हमारी वही है पॉलिसी. अगर आपकी वही है फिर आपने कैसे इनको नहीं रोका?
ये है क्योंकि चाइना ने तो ये कहा था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे. तो व्हाट कॉन्सिक्वेंस इफ दे कीप क्वाइट, देन वो तो खाली थ्रेट था.
हाँ जी,
अगर वो कुछ करते हैं इसके अपना कदम उठाते हैं,
गोइंग टू बी वेरी डिजास्ट्रस, वेरी वेरी डिजास्ट्रस। अच्छा जी, अब ताइवान जो है आपको पता ही है कि पिछले 25 साल से वो कहते हैं, चाइना कहता है कि जी ये हमारा टेरिटरी का हिस्सा, ये हमारी एक जो है प्रोविंस है, राइट। तो ये जब अपने एशिया टूर पे निकली तो पहले तो जो आइटनरी आई तो उसमें कहा गया जी सिंगापुर जाएंगी, मलेशिया और साउथ कोरिया और जापान जाएंगी, और जब ये निकली भी तो ये गई वहां पे जो है सबसे पहले जो इन्होंने स्टॉप लिया ये ताइवान नहीं था, ये गई मलेशिया गई, और फिर मलेशिया में वहां पे जो हमारा टीवी देख रहे हैं उनको ये नजर आएंगे कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ये मिली हैं, इस्माइल साबरी याकूब उनसे मिली हैं, और फिर वहां से ये जो है गई हैं ताइवान।
नोबडी न्यू
इनके प्रोग्राम का, किसी को नहीं पता था। अच्छा, इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश की है, इन्होंने कहा जी जब ये ताइवान पहुंची हैं कि कोई भी अमेरिका की पॉलिसी में ताइवान के ऊपर चेंज नहीं आई है, हम जो यहां पर डेलीगेशन, इससे पहले भी बहुत सारे अमेरिकन हाई फ्लाइंग जो डेलीगेशन है भेजते रहे हैं, और ये जो मेरा जो डेलीगेशन और मैं आई हूं इट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट, बट लोग कह रहे हैं कि आप जितना बड़ा यूएस ऑफिशियल कभी भी इससे पहले ताइवान में नहीं आया, यू आर द हाउस स्पीकर राइट, तो आप इधर आए। अच्छा,
गिनरिच हाउस स्पीकर गिनरिच गए थे।
अच्छा अच्छा, ओके,
1997 में,
बट दैट इज देन,
नॉट
रिसेंटली,
नॉट रिसेंटली।
हाँ, तो वो उसी की बात है कि ये अभी जो आप आए हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग जी, उन्होंने अब इसका बड़ा बुरा मनाया है, उन्होंने कहा है कि ये जो आपने यूएस ने जो हमें बिट्रेल शो किया है ये आपकी नेशनल क्रेडिबिलिटी की बैंकरप्सी शो करता है। बड़े सख्त वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं, यूएस की वो यूज करते हैं, और वो कहते हैं जी कि ये यूएस पॉलिटिक्स जो है और ये यूएस पॉलिटिशियंस जो हैं ये फायर के साथ खेल रहे हैं, और डेफिनेटली इसके जो आउटकम हैं वो अच्छे नहीं होंगे। इसके अलावा चाइना ने ये भी कहा है कि अब हम बहुत कैलकुलेटेड एक्शंस जो हैं अब वो लेना शुरू हम करेंगे। अब इन कैलकुलेटेड एक्शंस का क्या मतलब हो सकता है ये आप खुद करें। इसके अलावा वांग जी ने कहा कि ये जो अमेरिका है ये बुलिंग कर रहा है, और उसका जो सही फेस है जो कि आज तक उसने छुपाया हुआ था वो लोगों के सामने जो है वो आना शुरू हो गया, और हालांकि वो कहता है कि जी हम पीस की बात करते हैं मगर पीस का सबसे बड़ा जो सेबोटाज करने वाला जो कंट्री है वो यूएस है, और उन्होंने कहा जी कि ये सब बातें ठीक नहीं है। और आपको पता है कि आज जो ताइपे जो वहां का ताइवान का जो कैपिटल है उसके अंदर काफी बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए थे, जिस होटल में ये ठहरने वाली थी ग्रैंड हायत के अंदर, तो वहां पे सारा उन्होंने बंद किया हुआ था इलाका, और वहां पे काफी सिक्योरिटी हाई थी, और दो बिल्डिंग्स जो थी उनके ऊपर वैसे तो लेड डिस्प्लेज में कहा हुआ था कि वेलकम टू ताइवान स्पीकर पेलोसी, लेकिन काफी सिक्योरिटी वगैरह थी उधर, काफी इलाका बंद किया हुआ था। तो अब देखेंगे अब क्या करेगा चाइना। अच्छा जनाब, ये जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब आज ये बहुत तपे हुए थे, ये भी इन्होंने कहा जी कि हमने जब दोहा के अंदर तालिबान के साथ बैठ के डील बनाई थी तो हमने कहा था कि किसी टेररिस्ट को आप शरण नहीं देंगे, यानी कि शेल्टर नहीं देंगे, तो ये जो है इन्होंने जो शेल्टर किया हुआ था अलकायदा के टॉप लीडर एमन अल जुहरी को, तो ये कंप्लीट वायलेशन है दोहा अग्रीमेंट की। और हमने आपको कल बताई थी ब्रेकिंग न्यूज, वी वर द फर्स्ट वन टू ब्रेक दिस टू यू, कि जुहरी को जो है एमन अल जुहरी को यूएस स्ट्राइक में कल अफगानिस्तान के अंदर, कल नहीं मतलब ये वीकेंड पे मारा गया था, लेकिन कल ब्रेकिंग न्यूज आई थी जो हमने बताई थी, जो कि समझा जा रहा था कि ये जो अलकायदा है इसको बहुत बड़ा ब्लो लगा है आफ्टर उसामा बिन लादेन किलिंग इन 2011। और एंथनी ब्लिंकन साहब ने कहा कि तालिबान जो है वो बिल्कुल कमिटेड नहीं है, जो वो बातें उन्होंने की वो सब उसके ऊपर वापस चले गए हैं, और लेकिन हम इनकी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अफगान जो लोग हैं उनकी ह्यूमैनिटेरियन एड भी देते रहेंगे उनको, और उनके ह्यूमन राइट्स के लिए भी, खासतौर पर औरतों और जो लड़कियां हैं उनके ह्यूमन राइट्स के लिए हम काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने पहले तो तालिबान ने यह सारी जो चीज थी उसको डिनाई कर दिया था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है जैसे हमने कल बताया ही था कि जबी वाला मुजाहिद साहब ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ हमने सुना है और इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, तो ये सारा आज एंथनी ब्लिंकन ने इसको बड़ा बुरा मनाया। अच्छा, उसके साथ ही जो भरल लोग सोच रहे थे कि भाई पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से हम आपको बता दें, अभी इससे पहले कि हम पाकिस्तान की खबरों पर जाएं, कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हम बिल्कुल टेररिस्टों के साथ जो है वो नहीं है, और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ जो भी कोई अगर टेररिस्ट है और उसको कोई सजा दी जाती है तो हम जो है बिल्कुल हम काउंटर टेररिज्म की जो है एफर्ट्स उसके अंदर पाकिस्तान खड़ा हुआ है दुनियाजारी के साथ, तो ऐसे है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, रॉयटर्स की आज एक खबर है, एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ये स्टोरी जो है जनाब एमन अल जुहरी की है, और ये स्टोरी हम खबरों के बाद सुनाएंगे आपको। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि आपको आज पता चलेगी, द काइंड ऑफ मैन एंड द मेकिंग ऑफ एमन अल जुहरी, वो कैसे बने, क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट स्टोरी आज हम आपको सुनाएंगे।
यू आर लिसनिंग to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
After UK, Switzerland and Italy, the next phase of Khalistan referendum voting starts in Canada. The first voting centre for Khalistan referendum in Canada will be in Toronto, and voting will take place on Sunday, September 18th. For a voting centre location or for more information, please call 437-423-2669 or 437-423-2666.
National Kabaddi Federation of Ontario bade maan naal pesh karde ne 29th Canada Kabaddi Cup 2022 shanivar 6 august nu Hamilton de First Ontario Centre vikhe bhag le rahiyan teamaan Pakistan, India, England, USA, Canada East ate Canada West. Jankari layi call karo Harman Chahal 416-648-5050 jaan Sukhvinder Maan 416-617-2405. 29th कनाडा कबड्डी कप 2022
जी।
अच्छा जी, हिंदुस्तान के अंदर पीटीआई की यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की न्यूज है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज फिर से कांग्रेस पार्टी जो है उसके बहुत सारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनके ऊपर आज उन्होंने छापे मारे हैं, जिसमें कि ये जो हमने आपको स्टोरी सारी सुनाई थी कि जो नेशनल हेराल्ड न्यूज पेपर है उसके भी उसके अंदर हेडक्वार्टर्स थे इन मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। और इन्होंने कहा जी कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग अंडर द क्रिमिनल सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और हमको बहुत सारे जो है इलीगल जो है ट्रेल्स मिले हैं फंड्स के। तो आज इनका जो ऑफिस है कांग्रेस का बहादुर शाह जफर मर्ग उस जगह पे, और इनका जो आईटीओ है ऑफिस सेंट्रल दिल्ली में वहां पे इन्होंने आज किए हैं। और ये जो है बिल्डिंग इट इज एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो कि ये पेपर जो है नेशनल हेराल्ड उसको पब्लिश करते हैं। और इससे पहले हमने आपको बताया था कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को भी काफी दफा इन्होंने कई कई घंटे जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने और दूसरे भी कुछ कांग्रेस के पॉलिटिशियंस को क्वेश्चनिंग की है इसी सिलसिले में। तो आज उन्होंने रेड्स की हैं, तो अब देखेंगे इस सिलसिले में और आगे क्या होता है। एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ है, और ये एक इंडियन लड़का है जिसका नाम है जसवंत सिंह चहल, और ये इंग्लैंड के इलाके में वैसे रहता है, लेकिन इसको आज बड़े ही सिवियर जो ब्रिटिश एक्ट है इंग्लैंड के अंदर जो था 1942 ट्रीजन एक्ट, जो कि यूज नहीं किया है बहुत ही अरसे से इंग्लैंड के अंदर, उसके अंडर इस इंडियन लड़के को जो है आज ब्रिटिश जो पुलिस है उसने इसको पकड़ा है। उसकी वजह यह है कि ये लड़का जो था क्रॉस बो लेके, जो ये विंडसर कैसल है जहां पे के क्वीन एलिजबेथ टू थी लास्ट क्रिसमस पे, वहां पे ये खड़ा हो गया था, वहां पे एंटर एक तो हो गया और फिर वो लेके खड़ा हो गया। अब इस चीज को जो है ऑफेंसिव वेपन समझा जाता है, तो इसके ऊपर अब जो चार्जेस हैं ऑफेंसिव वेपन पोजेशन और थ्रेट टू किल के जो हैं वो लगाए गए हैं। और ये आज दुनिया को बड़ी ही हैरत हुई है, इसको जो है अब ये कोर्ट के सामने वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट लंदन में लाया जाएगा अगस्त 17 को। लोगों ने आज पूछा है कि ये तो 180 ईयर ओल्ड वो है एक्ट है, और ये लॉ तो अब इंग्लैंड में किसी के ऊपर लगाया ही नहीं जाता है। तो इसकी सिवियरिटी क्या है, ये असल में सच्चाई क्या है कि एक लड़का अगर जो है ये क्रॉस बो लेके खड़ा हुआ है तो कुछ और भी इसमें है कि नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रीजन एक्ट है ये तो अब यूज ही नहीं किया आपने 180 ईयर्स से।
बो जो है क्रॉस बो इज अ वेपन,
इज अ वेपन, जी 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 जी, वही विंडसर कैसल के में खड़ा हुआ था ना ये लेके। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये ट्रीजन एक्ट कैसे है, क्योंकि आपको पता ना कि ये हिंदुस्तान में लगाया जाता था, राइट कि आपने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आप बोले हैं थिंग्स लाइक दैट, या जहां जहां भी ब्रिटिश सरकार जो थी वो हुकूमत करती थी वहां पे ये लगाया जाता था। तो ये अब क्यों लगाया जा रहा है, तो अब लोगों का कहना है जो एक्सपर्ट्स हैं कि ये देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस, कुछ है, वरना ट्रीजन एक्ट नहीं लगाया जाता है। तो ये अब इसकी स्टोरी जो है, ये अभी तो हम फीलर छोड़ रहे हैं आपको, लेकिन अब स्टोरी आएगी तो हम आपको बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की आज कुछ बहुत ही दिल दुखाने वाली स्टोरीज हैं, और वही है कि रेप्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और हिंदुस्तान में, और काबू में नहीं आ रहे हैं। आज एक स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस कोर्ट जो है, उसने कटक के एरिया में एक 58 ईयर के आदमी को रिग्रस इम्प्रिजनमेंट दी है, और इस तरह की दी है कि जब तक ये अब जिंदा रहेगा ये जेल में ही रहेगा और इसको रिग्रस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, क्योंकि इसने दो माइनर लड़कियों को रेप किया था 2020 में। इसके अलावा जो केपी अघारा का जो पुलिस स्टेशन है उसमें, वहां से एक पुलिस कांस्टेबल को 24 साल की उसकी, आप देखें जरा उम्र 24 साल है टोटल, उस लड़के कांस्टेबल को भी जो है वो पकड़ा है आज पुलिस ने, क्योंकि एक 17 साल की बच्ची को उसने रेप किया। वो बच्ची जो थी अपने मां बाप के साथ लड़के घर से भाग गई थी, और इस पुलिस कांस्टेबल ने उसको कहा कि क्योंकि पुलिस के कपड़े उसने पहने हुए थे, तो वो बच्ची ने समझा होगा कि ये मुझे प्रोटेक्शन देगा। बहरहाल वो उसको अपने घर ले जाके उसने इसको बच्ची को रेप किया, और फिर बाद में डराया धमकाया कि खबरदार ये किसी को मत बताना। वो बच्ची जब घर गई उसने पेरेंट्स को बताया, तो पेरेंट्स ने फिर जब शिकायत की तो अब इस पुलिस कांस्टेबल को पकड़ा है। इसके अलावा एक कुछ अर्सा पहले आपको हमने बताई थी कि एक पब के अंदर एक 17 ईयर की जो ओल्ड लड़की थी उसको 6 लोगों ने एलिजली जो है वो रेप किया था। उसमें से जो 5 थे वो जुवेनाइल्स थे, बहुत ही छोटे, 16-17 साल ऐसी उम्र थी। तो इनको जी पकड़ा था वहां पे, ये जुबली हिल्स के एरिया में पुलिस ने, तो इनको तो 5 को तो छोड़ दिया, लेकिन एक जो मेन अक्यूज्ड है सदुद्दीन मलिक उसको नहीं छोड़ा है। और उसके बारे में पुलिस ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर अदालत ने कहा कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसके ऊपर वो चलेंगी। तो आज फिर से जो है इंडियन एक्सप्रेस में काफी रेप की जो है ये खबरें आ रही थी। जनाब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जी आज वर्डिक्ट अपना दे दिया है कि यस, पीटीआई की गवर्नमेंट ने और खासतौर पर इमरान खान साहब ने जो बाहर से फंड्स लिए थे वो उनके प्रोहिबिटेड रिसोर्सेज थे, और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं। इन्होंने फंड्स 34 फॉरेनर्स जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और यूएस में रह रहे थे, और यूएस की एक बिजनेस पर्सनालिटी थी, और 13 अनआइडेंटिफाइड अकाउंट्स जो थे उससे जो है उसमें इनके ये आए थे, और ये इन्होंने फॉल्स एफिडेविट्स जो थे ये अपने अकाउंट्स में दिए थे। खासतौर पर ईसीपी ने कहा कि इमरान खान साहब ने फॉल्स एफिडेविट दिया था, और इनका जो 3 मेंबर बेंच था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा और निसार अहमद दुरानी जो मेंबर्स हैं, और शाह महमूद जतोई, इन लोगों ने जनाब ये वर्डिक्ट दिया। अच्छा जी, अब जब ये वर्डिक्ट आई है तो जाहिर है कि अपोजिशन पाकिस्तान में भड़क गई है। अब अपोजिशन जो है उस वो कह रहे हैं कि अब आपको पता चल ही गया है कि इमरान खान कितना झूठा है, इसका सारा सच्चा चेहरा जो है आपके सामने आ गया है। खासतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो कह रहे हैं जी कि इस ये सबसे बड़ा चोर है, और ये इसकी बातों के ऊपर आप जो है वो आप बिल्कुल भी बिलीव ना करें। शायद खाकान अब्बासी ने भी यही कहा कि ये जो है 1.5 बिलियन रुपीज इलीगली इसने जमा किए हैं, और ये आए भी सारे इंडियन इजरायली सिटीजन से हैं, तो ये तो लॉ इसकी इजाजत ही नहीं देता, और अगर तो ये पैसे वेलफेयर के लिए थे, जो ये कहते हैं 550 मिलियन हमने लिए थे शौकत खानम के लिए, तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये पीटीआई के अकाउंट्स जो हैं उनके अंदर कैसे गए। तो आज काफी मारामारी चलती रही, और इसी तरह जो है वो मरियम नवाज, उन्होंने भी बड़ी वो सुनाई बातें, उन्होंने कहा कि ये झूठा है, ये है, वो है, बहुत सारी जी बातें।
प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई उनकी,
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज डिफरेंट हुई हैं, जिसमें कि ऑपोजिशन के डिफरेंट लोगों ने बात की। अच्छा, अब जब ये इन लोगों ने बात की तो जाहिर है कि पीटीआई के जो ऑफिशियल्स थे, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने भी फिर की। अच्छा, सबसे पहले तो फरूख हबीब साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की, उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये अप्रूव नहीं किया है अभी तक इसने, ईसीपी ने एक झूठा बस खाली इल्जाम लगा दिया है, और हम बड़े डिसअपॉइंटेड हैं इनका जो ये जो गलत नैरेटिव है पीटीआई के लिए। उन्होंने कहा जी हमारे तमाम के तमाम जो हैं ये अकाउंट्स ये बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो था उसने तो वैसे कहा था कि तमाम पार्टीज के अकाउंट्स प्रूव करो, तो खाली पीटीआई के क्यों किया गया है, पीपीपी और पीएमएल के अकाउंट्स की रिपोर्टें अभी तक सबमिट क्यों नहीं की गई हैं। इसके अलावा जी फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर कोई फंड रेज करते हैं तो उसकी तकलीफ इनको क्यों हो रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आती कि पीपीपी और पीएमएलएन और जेयूआईएफ वाले जो हैं ये सारे ये ओवरसीज पाकिस्तानीज को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। ये जो सारे हमारे 13-14 जो भी अकाउंट्स हैं ये लीगल हैं, और उनके फिर सब्सिडरी अकाउंट्स हैं जो कि छोटे हैं, जहां पे कि छोटी रकम आती है, और हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, हमारी तमाम की तमाम फंडिंग जो है जो आती है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर उसका जिक्र है, तो वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बहरहाल जी ये आज अब जो है वो सारा बड़ा वो है, तो जरा दिखाएं आमिर वो एक वो जो ग्राफिक है जिसके के अंदर आज ईसीपी ने कहा है कि ये जो है गलत तरीके से आए हैं आपके पैसे और इतने आए, ये देखें जी ये जो है ये सारी वो कहते हैं जी अमाउंट्स जो है ये आपके गलत उसमें तरीके से आई हैं।
जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते
हैं, जो हमारा टीवी देखते हैं वो देख सकते हैं, कुछ वो कहते हैं जी कि सिंगापुर से आई हैं, कुछ दुबई से आई हैं, कुछ कनाडा से आई हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो बड़े सारे सोर्सेज उन्होंने इधर बताए हैं। और इसमें अगर आप हमारा टीवी देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको एक नाम नजर आएगा एक लेडी का, मिसेज रुमिता शेट्टी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। इसके ऊपर हम एक स्टोरी करेंगे, कल हम कर सकते हैं इसके ऊपर एक स्टोरी, तो हम कल की स्टोरी इसके ऊपर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये सारा कुछ है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के, राजा सिकंदर राजा साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे अब थ्रेट्स आना शुरू हो गए हैं और मेरी लाइफ को बड़ा जो है वो खतरा है, तो इसलिए इनकी जो अब इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई है और इनके आसपास जो सिक्योरिटी है वो अब बीफ अप कर दी गई है। और इन्होंने कहा जी कि हमारे जो ईसीपी की जो बिल्डिंग है उसके पास बहुत ही सस्पिशियस लोग देखेंगे। आईएसपीआर ने जी वो तमाम लोग जिनकी जो है बहुत सैडली हेलीकॉप्टर में बलूचिस्तान के लसबेला के एरिया में जो हुई है, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो फिर से उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, वो जो रैकेज आज मिला है पाकिस्तान आर्मी का उनकी तस्वीरें आज इन्होंने जारी की आईएसपीआर ने। इसमें 6 जो है वो सोल्जर्स हैं और उसके अंदर एक जो है लेफ्टिनेंट जनरल हैं और बाकी दो ब्रिगेडियर्स हैं और बाकी फिर एक मेजर हैं, दो मेजर हैं और एक लांस नायक भी हैं। तो इन्होंने कहा जी कि वो एरिया बहुत ज्यादा मुश्किल था, वहां पे जो था एक तो नेटवर्क जो था फोन का भी नहीं मिल सकता था, वेदर बहुत खराब था और वो उसमें लसबेला में ना तो कोई जा सकती थी, जीप्स के पाथ बने हुए थे वहां पे, सिर्फ बाय फुट ही जाया जा सकता था या मोटरसाइकिल जा सकती थी या कि जो है कोई हेलीकॉप्टर ही जो एरियल सर्वेलेंस है वो हो सकती थी, कोई वहां पे इलाके में जो उस पहाड़ी इलाके में कुछ भी ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, तो लोकल वॉलंटियर्स जो थे उनकी हेल्प से फिर इन सब की बॉडीज जो है इन्ना लेला वन्ना लहरा जो वो रिकवर की गई है। वाईकॉम 18 स्टूडियोज जो है जी वो अब प्रोड्यूस कर रहे हैं आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्डा। आज उन्होंने एक छोटा सा ग्लिम्स उसका जो है छोड़ा है, हमने आपको बताया था लाल सिंह चड्डा जो है वो फॉरेस्ट गम जो मूवी आई थी उसके ऊपर ये उन्होंने बनाई है, और उस क्लिप में देखा जा रहा है कि आमिर खान साहब जो हैं कुछ तो बात कर रहे हैं करीना कपूर से भी और एक फौजी अफसर बन रहे हैं, और उसके अंदर जो है ये जब चीजें सामने आई तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ ने क्योंकि इन्होंने कुछ कॉमेंट्स दिए थे उससे पहले कि जिसमें कि जी हमारे हिंदुस्तान में कैसा माहौल है, मुझे लगता है कि मैं अब इधर रह सकता हूं कि नहीं, तो उसके ऊपर लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अब जब इनको मिलिट्री के यूनिफॉर्म में देख रहे हैं तो लोग कह रहे हैं वी आर वेटिंग टू सी यू, और जो है वो अब लोग जो है इस फिल्म का वेट कर रहे हैं। ब्रैड पिट साहब, ब्रैड पिट जनाब इधर, हाँ जी हाँ जी, फिर न्यूज के अंदर हैं, अपनी मूवी बुलेट ट्रेन के प्रीमियर के ऊपर जो थे वो थे और बड़े ही उन्होंने रंगीन, ये देखो जी जो हमारा टीवी देख रहे हैं बड़े ही रंगीन कपड़ों में ये नजर आए, बड़ा ही आई पॉपिंग था इनका जो लॉस एंजलिस के अंदर ये ड्रेस था, लाइम ग्रीन जो कोट है इन्होंने पहना हुआ था, उसके साथ मैचिंग बैगी पैंट्स थी, टील निट टॉप था इनका, और जो है लोगों के ऊपर ये वेव कर रहे थे रीजेंसी विलेज थिएटर से, तो लोगों ने बड़ा वो किया कि भाई वाओ क्या ड्रेस है, हालांकि क्योंकि 58 ईयर्स के हैं ये, तो उन्होंने कहा बड़ा ही फ्लैम्बॉयंट ड्रेस पहना है लेकिन ही वॉज कैरिंग इट सो वेल। और जनाब टाइगर वुड्स के बारे में खबर आई है कि टाइगर वुड्स को ग्रेग नॉर्मन ने बताया है कि जो सऊदी बेस्ड जो लिव क्रिकेट वाले हैं 800 मिलियन
लिव गोल्फ वाले,
लिव गोल्फ उन्होंने जनाब इनको 800 मिलियन यूएस डॉलर्स ऑफर किए थे, और उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं तो जो है पीजीए के साथ ही खेलूंगा।
दो दिन पहले ही हमने ये ब्रेक की थी न्यूज के
बड़े बड़े जो स्टार्स हैं वो नहीं आ रहे,
1 बिलियन डॉलर का उन्होंने कहा था कि 1 बिलियन डॉलर, 800 मिलियन का है, 200 मिलियन लेस देन 1 बिलियन।
या सो टुडे इज क्लेरिफाइड ना, क्लेरिफाइड उसने कहा कि ये रूमर्स आ रहे हैं तो माइट एज वेल आई शुड टेल यू। तो उन्होंने कहा जी कि ये इसने क्योंकि ब्रिटिश ओपन जब ये उधर गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये प्लेयर्स जो है पीजीए टूर को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं विच इज नॉट राइट लिव गोल्फ के लिए, तो ये इनको नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल जी वो कहते हैं इसने उसको किया, ये एक टॉक शो कर रहे थे ग्रेग नॉर्मन फॉक्स न्यूज के विद टकर कार्लसन, उसके अंदर फिर इनसे पूछा गया कि सच्चाई क्या है, कितना इसको ऑफर किया गया था, तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स इन्होंने दी हैं। पीसीबी ने जनाब आज कहा है कि इंग्लैंड जो है 7 T20s पाकिस्तान के अंदर खेलेगा, कुछ मैचेस कराची में और कुछ लाहौर में, और ये जो इंग्लैंड की टीम है ये आ रही है, आपको पता ही है, फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 17 ईयर्स, और नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर ये मैचेस खेलेंगे सितंबर 20th, 22nd, 23rd, 25th को, और उसके बाद कद्दाफी स्टेडियम में बाकी के जो तीन मैचेस हैं वो सितंबर 28th, 30th और अक्टूबर 2 को खेले जाएंगे. दिस इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेग ऑफ इंग्लैंड टूर ऑफ इंग्लैंड. उसके बाद ये फिर से वापस आएंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है 2022 में फॉर 3 टेस्ट इन दिसंबर. एंड जनाब एब्सोल्यूटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आज जो है अपना स्केड्यूल जो है वो अनाउंस किया है एशिया कप 2022 जो कि टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, और जो इंडिया पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल मैच है वो अगस्त 28th को होगा. ये सारे मैचेस जो हैं शारजा और दुबई के अंदर हो रहे हैं, और इसका होस्ट जो है श्रीलंका है जो कि अफगानिस्तान के साथ खेलेगा ओपनर ऑन अगस्त 27th. और आपको पता ही है लास्ट अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से वर्ल्ड कप मैच में हराया था, तो पायान और इस दफा हारना जाना किधरे उन भी इज्जत रखना साड़ी. ठीक है जनाब. अच्छा जी, ये है हमारी आज की तमाम कहानियां जो हैं, लेकिन असल स्टोरी जो कि एमन अज़ोहरी की है वो हम इस छोटी सी ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड.
अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें. प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट, ही विल मेक मॉर्गेज इजी फॉर यू. काकब जावेद मॉर्गेज एजेंट 416-454-6065.
दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर ने बिल बहुत ज्यादा बता दिया, सोचती हूँ बैक होम जाके दांतों का मुकम्मल इलाज कराऊं.
छोड़ो भाई, किंग बेस्ट स्माइल डेंटिस्ट्री को विजिट कर लो. दांत निकालना हो, क्राउन्स, ब्रिजेस, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, बच्चों के दांतों का मुकम्मल इलाज, रूट किनाल ट्रीटमेंट, और नए पेशेंट्स के लिए फ्री इलेक्ट्रिकल टूथ ब्रश भी है. कंसल्टेशन इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री.
पर जाना कहाँ है?
288 किंग स्ट्रीट वेस्ट, हैमिल्टन में, 905-521-0540.
जीवे 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 पाकिस्तान. जश्न आजादी पाकिस्तान मनाए एक्टिव मार्केटप्लेस के साथ एजेक्स में. संडे 14 अगस्त 10 बजे सुबह से लेके 9 बजे रात तक रंगारंग तकरीबात, मिली नगमे और मजेदार खाने. अपने बूथ या स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कीजिए 416-230-1906. एक्टिव मार्केटप्लेस, फ्री मार्केट, 19 नोशन रोड, एजेक्स.
भाई सस्ता ला ला, इंज कर तू 6 दी बजाय 5 ले ला. ओहो सरला भैन जी, कनाडा आ गए तुसी, इत्थे सब्जियां पिछे बारगेन करन दी लोड़ नहीं, क्योंकि एशियन फूड सेंटर ते वधिया फ्रेश ग्रोसरी, फ्रूट्स, दाला, सब्जियां सब कुछ बहुत घट कीमत विच मिलदा.
ए जी एशियन फूड सेंटर, इंडो कैनेडियन ग्रोसरीज, फल फ्रूट, दाला, सब्जियां दी वन स्टॉप शॉप. नाले साडे कोल इंडिया वाले भांडे, प्लेटां, बाटियां सब कुछ मिलदा. साडी सारियां ही लोकेशंस ते सोहणियां सोहणियां रखड़ियां दी बेशुमार वैरायटी भी है. एशियन फूड सेंटर दियां Ontario which 9 locations which on jithe marzi aa jao.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नासर शाह. आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं. अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे, और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं. और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल, मोटल, गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें. और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 647-741-9000.
अरे भाई, हम जानते हैं कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, जैसे रेड लाइट सिग्नल, बैंक की लाइन और हर रोज वो कॉफी की लाइन. मगर हम करते हैं आपके अपनों के बैंक अकाउंट्स पे मनी ट्रांसफर इन सबसे जल्दी, यानी रिसीव कटी नहीं और मनी ट्रांसफर डन, सिर्फ और सिर्फ एबल एक्सप्रेस की रिलायबल सर्विस के साथ. पाकिस्तान में डेडिकेटेड कस्टमर सर्विसेज, हमारी पहचान एबल एक्सप्रेस. फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल नाउ 416-230-4444. एबल एक्सप्रेस.
जी शाह जी,
हाँ जी अच्छा जनाब, मैं एक थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये जो मैं भी आपको बता रही थी कि ये जो सारी फेडरल पार्टीज ने पैसे जमा किए हैं, और मैंने कह दिया उसमें कि ये जो पीपल्स पार्टी है ये वो कैनेडियन की है, नहीं, दैट इज पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा, वो जो इटालियंस वाले हैं वो है ऑन्टेरियो ब्लू पार्टी जो है, और ये मैक्सिम बर्निर की है, मैक्सिम बर्निर की है ये पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ करेक्ट। ओके जी, अब हम चलते हैं अपनी इस स्टोरी के पास, और ये जो स्टोरी है आज इसमें काफी सारे जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं उसमें से लिया है, लेकिन मेन सोर्स जो था वो रॉयटर्स का था, और उसकी जो मेन स्टोरी थी वो फिर उसके ऊपर मैंने बिल्ड किया, और ये सारी स्टोरी जो है ये एमन अल-ज़ुहैरी के ऊपर बनाई है। आपको पता ही है कि 71 ईयर्स ओल्ड थे ये जिस वक्त अभी इनको ड्रोन अटैक के अंदर मारा गया है, और उसामा बिन लादेन के जो हैं राइट हैंड मैन समझे जाते थे, और उनकी डेथ के बाद जो है इन्होंने सारा जो है अलकायदा का वो उठा लिया था, बीड़ा उठा लिया था, और अभी जुलाई 31 को काबुल में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसमें ये मारे गए थे। उसामा बिन लादेन जो है उनको उनकी डेथ के बाद 2011 में बहुत सारे जो हैं वो यहां पे रिवोल्ट्स चल पड़े थे, आपको पता ही है अरब वर्ल्ड के अंदर, और उसने काफी चीजें जो हैं वो चेंज कर दी थी अरब वर्ल्ड के अंदर। तो ये जो थे इन्होंने फिर डिफरेंट जो ग्रुप्स थे ये जिनको के कहा जाता है टेररिस्ट ग्रुप्स, उनको जरा इकट्ठा करने की कोशिश की हुई थी, और उन लोगों ने फिर बहुत ही वायलेंट और डेवस्टेटिंग इंसर्जेंसीज एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में दिखाई थी। आपने खबरें सुनी होंगी कि जो आइसिस वाले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कर रहे थे जो कुछ सीरिया और इराक के अंदर। अच्छा, अलकायदा जो है ये आपको पता ही है कि अमेरिका कहता है कि इसने जो सितंबर 11, 2001 में जो अटैक्स हुए थे जिसके के अंदर 3000 लोग जो थे वो मारे गए थे, उसका जो मेन मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन, उनके साथ सारी प्लानिंग एमन अल-ज़ुहैरी ने जो है ये इन्होंने की थी। और लेकिन लोगों ने ये अब जब इनकी डेथ हुई है तो लोगों ने कहा जी कि ये सबसे पहली बार इनके बारे में कैसे ये सामने आए, कैसे इनके बारे में जो है बातें सामने आई। अच्छा, ये सबसे पहले जो दुनिया ने इनको देखा और इनको सुना वो था एक कोर्ट रूम के केज के अंदर, जब जो इजिप्शियन प्रेसिडेंट हैं अनवर अल सादात, उनको जब 1981 के अंदर जब उनका असैसिनेशन हुआ था तो उस वक्त ये इनको लेकर जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि हमने आज तक भी सेक्रीफाइसेस दी हैं और आइंदा भी अगर हमें इस्लाम की विक्ट्री के लिए सेक्रीफाइसेस देनी पड़े तो हम जरूर देंगे। इन्होंने एक वाइट सा जो है लंबा सा अपना रोब पहना हुआ था और जो है एक टोपी पहनी हुई थी, और ये बड़े गुस्से में थे क्योंकि अनवर सादात ने एक पीस ट्रीटी जो था वो इसराइल के साथ साइन किया था, और इन्होंने कहा था जी कि ये किसी सूरत भी हम इसराइल के साथ दोस्ती नहीं बनाना चाहते। तो उस पे इनको जो है 3 साल की जेल में डाला गया था। इसके अलावा इनके ऊपर इल्जाम लगाए थे कि इनके ऊपर जी इल्लीगल आर्म्स इनके पास से मिले थे और ये सब चीजें, लेकिन लोगों ने कहा कि ये आदमी है कौन। तो जब हमने डिग किया तो हमें पता चला कि ये एक ट्रेंड सर्जन है। एमन अल-ज़ुहैरी जो हैं ये एक ट्रेंड सर्जन हैं, और इनके ऊपर जब इनको एक्विट कर दिया था तमाम चार्जेस से, ये जो अनवर अल-सादात के सिलसिले के थे, तो ये फिर पाकिस्तान चले गए थे, और माजिद भाई इन्होंने रेड क्रॉस को वहां पे ज्वाइन कर लिया था। लेकिन वो जो रेड क्रॉस सिर्फ जो मुजाहिदीन जो थे वो जो रशियन वॉर में अफगानिस्तान में जो होते थे जख्मी होते थे उनका सिर्फ ये इलाज करते होते थे और किसी का नहीं करते थे, ये सिर्फ उनके साथ थे। तो जब वहां पे इन्होंने मुजाहिदीन की हेल्प करनी शुरू की, मरम पट्टी शुरू की, तो वहां पे इनकी मुलाकात फिर जो है उसामा बिन लादेन से हुई, और वहीं से इन्होंने फिर जो है उनके साथ दोस्ती शुरू की। इसके अलावा जो है ये ऑलरेडी क्योंकि लीडरशिप जो है इस्लामिक जहाद की इजिप्ट के अंदर 1993 में उसको हेड कर रहे थे, और ये बड़े फिर जो उसामा बिन लादेन की जो हिस्ट्री है उससे ये बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए, और उसामा बिन लादेन के साथ ही फिर ये जो है आखिरी वक्त तक रहे। एमन अल-ज़ुहैरी के बारे में कहते हैं जी कि ये 1990s के बीच में ये जो इजिप्शियन गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो करने की इन्होंने कोशिश की थी, और उसके अंदर जो बहुत सारे जो लोग थे जो कि शामिल फिर हो गए थे उसकी वजह से तकरीबन 1200 जो इजिप्शियंस हैं, ये जो बाकी फिर स्प्लिंटर ग्रुप्स बन गए थे, उसके इन्होंने 1200 इजिप्शियंस को मारा। उसकी वजह से जो इजिप्शियन अथॉरिटी थी उन्होंने इनके ऊपर जो है वो क्रैक डाउन किया, और इनके ऊपर ये भी इल्जाम लगाए गए कि उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे हुस्नी मुबारक उनको भी इन्होंने जून 1995 में असैसिनेट करने की जो प्लॉट थी उसके अंदर भी ये एडिस अबाबा में जो थे वो शामिल थे। एमन अल-ज़ुहैरी जो है इन्होंने फिर उसके रिएक्शन में, आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक जो इजिप्शियन एम्बेसी थी 1995 में उसके ऊपर एक अटैक हुआ था, एक एक्सप्लोजिव से भरी हुई गाड़ी थी एंड आई वाज इन इस्लामाबाद एट दैट टाइम, भरी हुई एक एक्सप्लोजिव की गाड़ी जो थी इजिप्शियन जो एम्बेसी थी वहां पे इस्लामाबाद में, वहां पे वो जो सारा वो जो रेड जोन का एरिया उसमें एंटर होकर इसने उसके साथ वो जो थी वो मारी थी, और एक नहीं थी दो गाड़ियां थी, दो गाड़ियां वहां पे गई थी, उससे वो काफी नुकसान वगैरह हुआ था और वो सारी जो थी वो उड़ गई थी, और उसके अंदर जो है 16 लोग जो खासतौर पे जो गार्ड्स थे या वहां पे और जो लोग खड़े थे उन लोगों की डेथ हुई थी, तो उसके अंदर भी इनका जो नाम है वो लिया जाता है। 1999 फिर जो इजिप्शियन कोर्ट है उन्होंने कहा था कि इनको जो है इनके डेथ के जो है वारंट्स निकाले थे उन्होंने, और कहा था कि ये जब भी इजिप्ट आएंगे, क्योंकि ये ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर इन इजिप्ट, तो इनके इन एब्सेंटिया इनके लिए जो है डेथ वारंट निकाला गया था, और कोर्ट ने कहा था कि जब भी कभी ये आएंगे यहां पे इजिप्ट आएंगे तो इनको जो है डेथ सेंटेंस दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारी जो वीडियो टेप्स हैं आपकी, आपको पता ही है कि अल जजीरा वाले इनकी और उसामा बिन लादेन जो हैं उनकी रिलीज किया करते थे, तो उसमें अक्सर ये देखा जाता था कि ये दोनों जो हैं वो बहुत ही जो रॉकी माउंटेन्स हैं उसके अफगानिस्तान के उसके अंदर जो हैं ये फिर रहे हैं और कोई चीजें डिस्कस कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, और उसके बाद जो है लोगों ने जब इनको ढूंढना शुरू किया तो इनको पता नहीं चलता था कि ये कहां होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस तरह का वो माउंटेनियस जो ट्रेन है अफगानिस्तान का, और खासतौर पर जो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर है वो तो बहुत ही ज्यादा इस तरह का है कि बीच बीच में पहाड़ों के बीच में इन्होंने जगह बनाई हुई थी, तो कभी कभी लोग सोचते थे कि ये वहां पे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, ये जब अटैक हुआ तो वही वो लोगों ने पूछा कि भाई फिर अटैक कैसे हुआ, अगर इतनी मुश्किल टेरेन है और इतनी मुश्किल वहां पे जाना है तो ये कैसे लोगों को पता चला कि ये कहां है। अच्छा, यूएस इंटेलिजेंस जो है बहुत अरसे से इनके पीछे थी, और यूएस इंटेलिजेंस ने जो अपने बंदे भी छोड़े होते हैं जाहिर है, उन्होंने भी इनको इत्तला दी कि ये उधर वहां पर उस जगह पे अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पे एक घर है छोटा सा, और उसके अंदर इनकी जो फैमिली है जैसे कि वाइफ है बेटी है वो रह रहे हैं, और एक दिन अकॉर्डिंग टू द यूएस इंटेलिजेंस अलेजली ये अपनी बालकनी के ऊपर आए हैं अपने घर की, उससे फिर इनको आइडेंटिफाई किया गया और फिर उससे फिर इनके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया, और उस अटैक में जो है फिर इनको मारा गया। इन्होंने जो लीडरशिप ली थी अलकायदा की वो 2011 में ली थी इन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से इसको चलाने की कोशिश की थी, और इन्होंने जो है वो हमेशा जब आप अल जजीरा पे इनकी तस्वीरें देखते थे तो आपने देखा होगा कि इन्होंने ग्लोबल जिहाद की कॉल दी थी, और हमेशा जब बात करते थे तो AK-47 इनके पास होता था जो वीडियो मैसेजेस होते थे, और इन्होंने कहा था कि वेस्ट के ऊपर हमको उस वक्त तक अटैक करने चाहिए मुसलमानों को जब तक ये मुस्लिम लैंड्स को, फॉर एग्जांपल इसराइल को ये धमकी देते थे कि जब तक तुम लोग मुस्लिम लैंड्स को या जो यूएस की फोर्सेस इराक में थी उनको कहते थे कि नहीं छोड़ के जाओगे हम अपना जिहाद तुम्हारे खिलाफ जो है वो जारी रखेंगे, और उसकी वजह से जो आइसिस की भी जो इमरजेंस हुई थी 2014-2019 में इराक और सीरिया में, तो वो भी वेस्ट जो है उसका भी ब्लेम इनको देती है कि इनके जो भड़कीले बयान थे उसकी वजह से जो है वो है। लेकिन एमन अल-ज़ुहैरी का कहना था कि यूएस की जो पॉलिसी है मिडल ईस्ट में पैलेस्टाइन में वो इनको पसंद नहीं थी, तो ये बहुत ही भड़कीले जो है इस तरह के बयान देते थे, मुसलमानों को कहते थे तुम्हें जमा होने की जरूरत है जिहाद करने की जरूरत है, ये क्यों काफरों का तुम लोग साथ दे रहे हो, क्यों इनके स्लेव्स बन गए हो, तो इस तरह से ये बात करते थे। अच्छा, अब जबकि ये इनको डिफरेंट तरीके से हर दफा जो है किसी ना किसी केस में या इजिप्ट में या कहीं बाहर जो इनका नाम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 9/11 में भी इनका नाम आया था, इसी तरह तंजानिया के अंदर भी एक जो है बॉम्बिंग्स हुई थी यूएस के ऊपर 1998 में, तो उसमें भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एमन अल-ज़ुहैरी का नाम आया था, और FBI ने उस वक्त फिर इनके ऊपर $25 मिलियन का इनके सर पर बाउंटी रखा था कि जो कोई भी हमें एमन अल-ज़ुहैरी का बताएगा तो उसको जो है हम इतने पैसे देंगे। अच्छा जनाब, अब इनकी स्टार्ट कहां से हुई और बेसिकली ये कौन है? बेसिकली ये इजिप्ट में हैं और ये पैदा हुए थे 1951 में, एक किसी जैसे कि बाकी के ये अलकायदा वगैरह के लीडर्स थे, नॉट उसामा बिन लादेन लेकिन बाकी के, कि बहुत ही गरीब घरों के और स्लम्स के और ऐसे आके, और इधर और भी जो बाकी आइसिस की भी मोस्टली कहा जाता है उस तरह के नहीं थे, बहुत ही कायरो की वेल जो नोन फैमिली और बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली एंड रिच फैमिली जो है उसको बिलोंग करते हैं एमन अल-ज़ुहैरी। और ये पैदा हुए थे 1951 में, और ये जो अल अजहर के ग्रैंड इमाम हैं उनके ग्रैंड सन है, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि नाना इनके जो थे ग्रैंड इमाम थे अल अजहर यूनिवर्सिटी के, तो वो थे। और इनको जो ये कायरो का मदी सबब है वहां पे इनको रेज किया गया था, और इनके अपने खुद के जो वालिद साहब हैं वो भी एक फार्माकोलॉजिस्ट प्रोफेसर थे माजिद भाई, तो वेरी लर्नड फैमिली, वेरी वेरी लर्नड फैमिली। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 15 साल की उम्र में पता नहीं क्या हुआ इनको कि अचानक से इनका रुख बहुत ज्यादा, जो अब मुझे नहीं ये वर्ड वैसे यूज करना चाहिए एज अ मुस्लिम, लेकिन जो वर्ड्स यूज करता है वेस्ट, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जो है, क्योंकि इस्लाम तो इस्लाम ही है, अच्छा बुरा या फंडामेंटलिस्ट या वो नहीं हो सकता ना, इस्लाम तो इस्लाम, तो वो कि जैसे वेस्ट ने इसको क्या कि जी बहुत ही फंडामेंटलिस्ट इस्लाम जो है उसको ये जो है फॉलो करना शुरू कर दिया 15 साल की उम्र में। और ये जो थे ना वहां पे इजिप्शियन राइटर सैयद कुतुब, उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और आपको अगर पता होए सैयद कुतुब की भी स्टोरी के इनको भी जो है एग्जीक्यूट किया था 1996 में, क्योंकि उनके जो आइडियाज थे और उनके ऊपर जो इल्जाम भी थे कि उन्होंने उस वक्त की इजिप्शियन गवर्नमेंट जो है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश की थी, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो भी, तो उनसे ये बहुत ज्यादा जो है वो थे। अच्छा, अल जोहरी जो है इन्होंने कायरो यूनिवर्सिटी में मेडिसिन पढ़ा हुआ है माजिद भाई, और ये प्रॉपरली ट्रेन्ड डॉक्टर हैं। इससे पहले कि ये अल अजहर में जाते, ये बिकॉज अल अजहर का एक रूल है कि वो वैसे ही किसी बच्चे को उठा के मुल्ला नहीं बना देते, वो उनका एक रूल है अल अजहर का कि पहले आपने दुनिया की तालीम हासिल करनी है, आप ना डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फिजिसिस्ट हैं, न्यूरोफिजिस्ट हैं, MBA किया हुआ, फिर आपने दुनिया की तालीम लेके फिर आप आएंगे दीन की तालीम लेने के लिए। तो दे डोंट यू नो रजिस्टर एनीबडी जिसके के पास, जो बिल्कुल अनपढ़ जाहिल है, जो कि सिस्टम हमारे मुल्क में पाकिस्तान में नहीं, तो वो तो इन्होंने जी अपनी जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन थी उसको 1970s में ज्वाइन किया था। और जब ये वेस्टर्न मीडिया ने कल जब इनकी डेथ हुई है तो जब लोगों से बात अब करनी शुरू की है, या जो पहले भी इनके ऊपर आर्टिकल आए थे उसमें जब दोस्तों से इन्होंने पूछा एमन अज़वेरी के कि ये किस तरह का आदमी था, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा अच्छा एनलाइटेंड आदमी था, म्यूजिक भी सुनता था, बड़ी अच्छी बात करता था, जोक्स करता था, मगर पता नहीं कैसे हुआ। अच्छा, अब ये जो सारी चेंज आई एमन अज़वेरी में ये कैसे आई और किस वक्त आई, ये जनाब जो हिस्टोरियंस जो कायरो के अंदर थे जिन्होंने कि फिर एमन अज़वेरी के ऊपर हिस्ट्री लिखी, उन्होंने कहा कि जब अनवर अल सादात की असैसिनेशन के केस में जब इनको पकड़ा तो इनको जिस वक्त वहां पे जेल में डाला, तो ये जब इसको केज में बंद करके लाए जहां पे कि इन्होंने अपनी वो फेमस स्पीच की कि हम जो है हमने सेक्रीफाइसेस की हैं और हम और भी सेक्रीफाइसेस किएंगे, तो उस वक्त सारा जो प्रेस था इंटरनेशनल, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा मसला था इजिप्ट का प्रेसिडेंट के ऊपर जो असैसिनेशन आई थी, तो इंटरनेशनल प्रेस सारा खड़ा हुआ था, तो उस वक्त इन्होंने कहा था एमन अज़वेरी ने कि यहां पे तुम लोगों को पता नहीं है कि जेलों के अंदर हमारे साथ क्या किया जाता है, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े जाते हैं, हमारी बीवी बेटियां बहनें जो हैं उनको उठाया जाता है, उनके थ्रू हमारे ऊपर जो है प्रेशराइज किया जाता है कि हम अगर हमने कोई क्राइम नहीं भी किया है तो हम उसको माने कि हमने वो क्राइम किया है, तो ये टैक्टिक्स ये लोग यूज करते हैं और हमें मारते हैं, पीटते हैं, कुत्ते हमारे पे छोड़ते हैं। उसकी वजह से इनकी जो साइकोलॉजिकल मेकअप था वो इतना ज्यादा ट्विस्ट हो गया कि इन्होंने कहा कि बस नथिंग डूइंग नाउ, और मैं जो है अब ये जितने भी तुम जैसे ये जो वेस्ट से इंस्पायर्ड लोग हैं अब मैं उनके खिलाफ काम करूंगा। तो उधर से फिर इनका जो रुझान था फिर वो ज्यादा ही फंडामेंटलिज्म की तरफ और इस तरफ जाना शुरू हुआ। एंड देन फाइनली जैसे कि मैंने बताया कि ये वहां से निकल के पाकिस्तान चले गए, फिर इन्होंने रेड क्रॉस ज्वाइन कर ली, वहां पे ये जो वो थे जो जहादी थे उस वक्त जो कि रशियन एम्पायर के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे उनको उनकी मरम पट्टी करते थे, उधर इनकी दोस्ती फिर हुई उसामा बिन लादेन से, और फिर देन यू नो इट गोज ऑन एंड ऑन। तो ये है जनाब एमन अज़वेहरी की स्टोरी।
wow.
मगर
लारा पीपल न्यू के
ह्यूज एजुकेटेड एंड स्कॉलर, स्कॉलर थे बहुत बड़े, बहुत किताबें पढ़ते थे बहुत, और मतलब है बहुत बड़ी स्कॉलिस्टिक जो फैमिली है उसको बिलोंग करते थे एमन अज़वेरी। तो मतलब नॉट रियली सम यू नो ऑर्डिनरी फैमिली या के अनपढ़ जाहिल लोग या के गरीब लोग, तो इस तरह से तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ दिस मैन। तो आज लोगों ने बहुत अफसोस का इजहार किया है उसमें काबुल के अंदर, कुछ लोग तो मानने को ही तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि ये जिस तरह से इन्होंने उसामा बिन लादेन को मार दिया अमेरिका ने उसी तरह ये मार दिया, हम जब तक उसकी लाश नहीं देखेंगे हम मानेंगे नहीं किसने किसको मारा है। तो ये झूठ बोलते हैं हमेशा हमारा।
तो अभी तक लाश
मिली नहीं है, उनका पता नहीं चल रहा है कि वो लाश कहां है। तो वही जो काबुल के अंदर आज जो इंटरव्यूज चल रहे थे इंटरनेशनल प्रेस ले रही थी, वो कह रहे थे हम लाश देखेंगे, हम देखना चाहते हैं कि किसको मारा है तुमने, क्योंकि पहले भी तुमने कहा था उसामा बिन लादेन को तुमने मारा है, तो वो हमें शक्ल नहीं उसकी दिखाई थी, सो वी डोंट नो इफ यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ. तो अब इसका भी वो मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता तुमने एमन अलज़वेरी को मारा भी है कि नहीं.
ये थी सब आज की खबरें, और बाकी खबरें कल इंशाल्लाह ताला फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. और हाँ जी हाँ, शहजाद जी भी होंगे हमारे साथ, अभी हम छुट्टी दे रहे हैं इनको. शहजाद जी थैंक यू सो मच.
थैंक यू माय सेल्फ, सी यू टुमारो
इंशाल्लाह. एंड कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, दो या तीन, उसके फौरी बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे. 4166201778 हमारा फोन नंबर.
आयशा ये तुम क्या सर पकड़कर बैठी हो,
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए.
10 जगह क्यों, एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स.
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी. ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी. मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा. 9058487000. फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त.
विलेज टेस, ओंटारियो का सबसे बड़ा पाकिस्तानी बफे 40 से ज्यादा आइटम्स के साथ. एंजॉय करें हमारे डिलीशियस मेन्यू को, कढ़ाई, करीज, बारबेक्यू, बारबेक्यू प्लेटर, रोल्स एंड मच मच मोर. और अब डेली डिनर बफे और वीकेंड ब्रंच बफे भी. पार्टी रूम्स या कैटरिंग सर्विसेज के लिए कॉल 9052323663, 6477744888. विलेज टेस्ट.
चलो चलिए ताजियां सब्जियां लैन अपने फार्म कैलेडन सब्जी फार्म ते, आज ही आओ ते खरीदो स्पेशल डिस्काउंट ते ताजे चप्पन कद्दू, किया, साग, पालक, मेथी, धनिया, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, गाजर ते होर दूसरियां सब्जियां ते फल भी. इत्थे सब्जियां ते फलां दे बूटे, खाद, गार्डनिंग दा समान, पॉट्स, इंडियन तंदूर अते इंडियन बाईसाइकिल भी मौजूद है. होर जानकारी लई विजिट करो कैलेडन सब्जी फार्म, 12050 एयरपोर्ट रोड, जां फिर कॉन्टैक्ट करो 905-9653633.
जी सामान्य नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन. 6:50 और 27 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और सब स्टिल ब्यूटीफुल. 26 डिग्रीज टेम्परेचर. एक नोहे की तरफ आपको लिए चलता हूं, और ये जनाब सलमान अमजद अमानत अली खान की आवाज में. समाप्त फरमाइए, 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
शाम दबाजार ते हर आबिद बीमार, शाम दबाजार बीमार. पत्थरां दी वसदी बारिश, पत्थरां दी वसदी बारिश, जंजीरां विच लाचारे शां, छेती टूरण दी कोशिश करदा रे मुहारी, करदारे मुहारी, छाले टूरण नहीं देंदे, छाले टूरण नहीं देंदे, रास्ता रत रो पे आम
مجلس پڑے گا عابد مجلس پڑے گا عابد زینب نو انتظار شام دجلا قتل ہو گئے مسلم دے دو شہزادے دجلا تے قتل ہو گئے مسلم دے دو شہزادے تو کھا گئی ہنیری دو کھا گئی ہنیری دو چھوڑ گئی کتارے کر لے قبول میرا بی بی رکیا کر لے پرسا قبول میرا ریسی فیاض تیرے ریسی فیاض تیرے پترا دا سوگوارے شان.
You are listening to WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL because we care.
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ